अध्याय 35 कोरह का विद्रोह। ये अध्याय गिनती 16 और 17 पर आधारित है। इसराइल पर आई दंडाज्ञाओं ने कुछ समय के लिए उनकी कुड़कुड़ाहट और दुर्विनीतता पर प्रतिबंध तो लगाया, लेकिन जो विद्रोह की भावना अभी भी उनके हृदय में थी, अंततः अत्यंत कटु परिणाम लेकर आई। पहले हुए विद्रोह केवल जनसाधारण का उत्पात रहे थे, जो उत्तेजित भीड़ के आकस्मिक आवेग से उत्पन्न होते थे, परंतु अब एक गहरा षड्यंत्र रचा गया जो स्वयं परमेश्वर द्वारा नियुक्त अगुओं के अधिकार को उखाड़ फेंकने के निश्चित उद्देश्य का फल था। कोरह इस आंदोलन का मुखिया एक लेवी था, कहात के परिवार से था और मूसा का संबंधी था। वह एक योग्य और प्रभावशाली मनुष्य था। हालांकि वह पवित्र मंडप के कार्य के लिए नियुक्त था, वह अपने पद से असंतुष्ट हो गया था और याजकता के गौरव के लिए महत्वाकांक्षी था। हारून और उसके परिवार को दिया गया याजकता के प्रभार ने, जो पहले के समय में प्रत्येक परिवार के पहलौठे पुत्र को दिया जाता था, ईर्ष्या और असंतुष्टि को जन्म दिया। और कुछ समय से कोरह गुप्त रूप से मूसा और हारून के अधिकार का विरोध कर रहा था, हालांकि उसने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह का प्रयत्न नहीं किया था। आखिरकार उसने धार्मिक और नागरिकता संबंधी दोनों ही आधिपत्यों को उखाड़ फेंकने का दुस्साहसी षड्यंत्र रचा। उससे सहानुभूति रखने वाले ढूंढने में वह असफल नहीं रहा। मिलाप वाले तंबू के दक्षिण में कोरह और कहातों के तंबुओं के पास रूबेनियों का डेरा, अबीराम और दातान के तंबू थे और कुल के ये दो प्रधान कोरह के करीब थे। ये प्रधान तत्परता से कोरह की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सम्मिलित हो गए। याकूब के सबसे बड़े पुत्र के वंशज होने के नाम पर इन्होंने दावा किया कि नागरिक संबंधी आधिपत्य उनका होना चाहिए, और उन्होंने याजकता के कर्तव्यों को कोरह के साथ बांटने का संकल्प किया। लोगों की भावना की अवस्था ने कोरह के षड्यंत्र का साथ दिया। उनकी निराशा की कड़वाहट में उनके पहले वाले संदेह, ईर्ष्या और घृणा लौट आए थे, और फिर से उनकी शिकायतों ने उन्हीं के धैर्यवान अगवे के विरुद्ध निशाना लगाया। इसराइली लगातार इस तथ्य को भूल रहे थे कि वे प्रभु के मार्गदर्शन में थे। वे भूल गए कि वाचा का स्वर्गदूत उनका अदृश्य अगुआ था, और ये कि बादल के स्तंभ में आवृत मसीह की उपस्थिति उनके आगे आगे जाती थी, और मूसा उसी से सारे निर्देश प्राप्त करता था। भीड़ में मृत्यु को प्राप्त होने की भयंकर दंडाज्ञा के आगे समर्पण करने को वे तैयार नहीं थे, और इस कारण वे प्रत्येक उस बहाने को पकड़ने को तैयार थे जो उन्हें विश्वास दिलाता था कि परमेश्वर नहीं वरन मूसा था जो उनकी अगुवाई कर रहा था और जिसने उनके सर्वनाश की घोषणा की थी। पृथ्वी पर वास करने वाले सबसे दीन मनुष्य के अति उत्तम प्रयत्न इन लोगों की दुर्विनीतता को दबा नहीं सके, और हालांकि उनकी घटी हुई संख्या और खंडित टुकड़ियों में उनकी पहले दिखाई गई भ्रष्टता पर परमेश्वर की अप्रसन्नता के चिन्ह अभी भी उनके सामने थे, फिर भी उन्होंने हृदय से सबक नहीं सीखा। वे फिर से प्रलोभन में बह गए। उत्पाती प्राणियों की विशाल सभा का अगुवा होने की उसकी वर्तमान पदवी से अधिक मूसा का दीन चरवाहे वाला जीवन इस जीवन से अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल था। लेकिन मूसा ने दोनों में से एक को चुनने का दुस्साहस नहीं किया। चरवाहे की लाठी के स्थान पर उसे राजदंड थमा दिया गया था, जिसे वह तब तक नीचे नहीं रख सकता था जब तक परमेश्वर उसे इस कर्तव्य से मुक्त न करता। जो हृदय की गुप्त बातों को पढ़ता है, उसने कोरह और उसके साथियों के प्रयोजन को भांप लिया था, और उसने अपने लोगों को ऐसे चेतावनी और निर्देश दिए थे कि वे इन षड्यंत्रकारियों के चंगुल से बच निकलने के योग्य हो जाते। मूसा के विरुद्ध ईर्ष्या और शिकायतों के कारण मरियम पर आई परमेश्वर की दंडाज्ञा को उन्होंने देखा था। प्रभु ने घोषित किया था कि मूसा नबी से सर्वश्रेष्ठ है, उसके साथ में आमने सामने होकर बात करूंगा, और उसने कहा, क्या तुम मेरे दास मूसा के विरुद्ध बोलने से नहीं डरे? गिनती 12 आयत 8। यह निर्देश केवल हारून और मरियम के लिए ही नहीं, वरन समस्त इसराइल के लिए थे। कोरह और उसके सह षड्यंत्रकारी वे मनुष्य थे जिन पर परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी महानता के विशेष प्रदर्शनों द्वारा कृपा दृष्टि थी। वे उनमें से थे जो मूसा के साथ पर्वत पर गए और जिन्होंने पवित्र तेज का दर्शन किया। लेकिन उस समय के तत्पश्चात एक परिवर्तन आया। एक प्रलोभन जो पहले नगण्य था, विकसित होने दिया गया था और वो सशक्त हुआ और उसे तब तक प्रोत्साहित किया गया जब तक उनके मन शैतान द्वारा नियंत्रित हो गए और उन्होंने विद्रोह करने का अपना कार्य प्रारंभ किया। लोगों की समृद्धि में रुचि रखने का दावा कर उन्होंने आपस में पहले अपनी असंतुष्टि प्रकट की और फिर उसे इज़राइल के प्रतिष्ठित मनुष्यों तक पहुंचाई। उनके परोक्ष संकेतों को इतनी तत्परता से ग्रहण किया गया कि वे विद्रोह कार्य में और आगे बढ़े और अंत में स्वयं को परमेश्वर के लिए जोश से प्रेरित समझने लगे। वे 250 प्रधानों को, जो प्रजा में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अलग करने में सफल हुए। इन सशक्त और प्रभावशाली समर्थकों के होते हुए वे हारून और मूसा के शासन प्रबंध में सुधार लाने के लिए और शासन में सुधारवादी परिवर्तन करने के लिए निश्चित महसूस करने लगे। संदेह ने ईर्ष्या को जन्म दिया था और ईर्ष्या ने विद्रोह का जन्म दिया। उन्होंने मूसा के इतने अधिक सम्मान और अधिकार के प्रश्न पर परिचर्चा की थी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि मूसा एक वांछनीय पद पर आसीन था जिसकी आपूर्ति उचित रूप से उनमें से कोई भी कर सकता था। ऐसा सोचने में उन्होंने स्वयं को और एक दूसरे को इस भ्रम में डाल दिया कि मूसा और हारून ने स्वयं उन पदों पर अधिकार जमा लिया जिन पर वे आसीन थे। असंतुष्ट जन कहने लगे कि इन अगवों ने संचालन और याजकता का दायित्व अपने ऊपर लेने में स्वयं को प्रभु की प्रजा से ऊंचा पद दे दिया था, लेकिन उनके परिवार अन्य इसराइलियों से अधिक विशिष्टता के लिए अधिकृत नहीं थे। वे प्रजा से अधिक पवित्र नहीं थे और उनके लिए इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वे अपने भाई बंधुओं के समान स्तरीय रहे, जो परमेश्वर की विशेष उपस्थिति और सुरक्षा से अनुग्रहित थे। षड्यंत्रकारियों का अगला कार्य लोगों से संबंधित था। जो दोषी होते हैं और दंड के योग्य होते हैं, वे प्रशंसा और सहानुभूति पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार कोरह और उसके समर्थकों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और प्रजा का समर्थन प्राप्त किया। उस आरोप को कि लोगों की कुड़कड़ाहट के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा था, एक गलती घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रजा का कोई दोष नहीं था, क्योंकि वे केवल अपने अधिकारों की कामना कर रहे थे, लेकिन मूसा एक दमनकारी शासक था और उसने लोगों को पापियों समान दंडित किया था, जबकि वे पवित्र लोग थे और प्रभु उनके बीच में था। कोरह ने उनकी भीड़ में आरंभ से लेकर अंत तक की यात्रा के इतिहास की समीक्षा की, जहां उन्हें कठिन स्थानों में लाया गया और कई अपनी कुड़कुड़ाहट और अनाज्ञाकारिता के कारण नष्ट हुए। उसके सुनने वालों ने सोचा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि यदि मूसा ने कोई दूसरा मार्ग लिया होता तो वे इन विपत्तियों से बच सकते थे। वे कृत संकल्प थे कि उन पर आई समस्त कठिनाइयों के लिए मूसा दोषी था और कनान से उनका बहिष्कार हारून और मूसा के कुशासन का परिणाम था, और ये कि यदि कोरह उनका अगुवा होगा और उन्हें अच्छे कर्मों पर ध्यान देने को प्रोत्साहित करेगा बजाय इसके कि उनके पापों के लिए दंडित करे, तो उनकी यात्रा शांतिपूर्ण व सुखद होगी। बीहर में इधर उधर भटकने के बजाय वे सीधे प्रतिज्ञा के देश की ओर प्रस्थान करेंगे। विद्रोह के इस कार्य में प्रजा के असंगत तत्वों में पहले से अधिक एकता और सामंजस्य था। लोगों के बीच कोरह की सफलता ने उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की और उसके इस विश्वास की पुष्टि की कि यदि मूसा द्वारा अधिकार के हड़पने को अनदेखा किया गया तो वो इज़राइल की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध होगा। उसने ये भी दावा किया कि परमेश्वर ने इस विषय को उसके सम्मुख रखा था और उसे अधिकृत किया था कि बहुत देर होने से पहले वो शासन में परिवर्तन करे। लेकिन कई लोग कोरह के मूसा के विरुद्ध आरोपों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके धैर्यशील आत्मत्यागी परिश्रम की स्मृति उनके समक्ष आ खड़ी हुई और उनकी अंतरात्मा बेचैन हो उठी। इस कारण ये अनिवार्य हो गया कि इज़राइल के लिए उसकी गहरी रुचि को उसके किसी स्वार्थपूर्ण प्रयोजन के साथ जोड़ा जाए। पुराने आरोप को दोहराया गया कि वो उन्हें बीहड़ में नष्ट करने के लिए लाया ताकि वो उनकी धन संपत्ति को लूट सके। कुछ समय तक ये कार्य गुप्त रूप से किया गया, लेकिन जैसे ही आंदोलन प्रत्यक्ष अतिक्रमण की दस्तक देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल हो गया, कोरह उपद्रवी दल के सिरे पर प्रकट हुआ और उसने सार्वजनिक तौर पर मूसा और हारून पर उस अधिकार को हड़पने का आरोप लगाया जिसका प्रयोग करने के लिए स्वयं कोरह और उसके सहयोगी अधिकृत थे। इसके अतिरिक्त ये आरोप भी लगाया गया कि लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया था। षड्यंत्रकारियों ने कहा, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। मूसा ने इस गहरे षड्यंत्र का संदेह भी नहीं किया था, और जब इसका भयानक अभिप्राय उसके सामने उभर कर आया, परमेश्वर से चुपचाप विनती करते हुए वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसे ईश्वरीय मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। उसने मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा, जिसको वो आप चुन लेगा उसी को समीप बुला भी लेगा। इस परीक्षा को सुबह तक के लिए स्थगित किया गया ताकि सभी को विचार करने का समय मिल सके। जो याजकता की चाह रखते थे उनमें से प्रत्येक को अपना अपना धूपदान लाना था और प्रजा की उपस्थिति में पवित्र मंडप में धूप बलि चढ़ानी थी। नियम एकदम सुस्पष्ट था कि जो इस पवित्र कार्य के लिए अभिषिक्त थे केवल वही मिलाप वाले तंबू की सेवा टहल करें, और नादाब और अबीहू भी, जो स्वयं याजक थे, सनातन आज्ञा की अवमानना करते हुए बलि की विधि में ऊपरी आग का प्रयोग करने के कारण नाश को प्राप्त हुए। फिर भी मूसा ने उस पर आरोप लगाने वालों को चुनौती दी कि यदि वे ऐसे खतरनाक आकर्षण से प्रभावित होने का दुस्साहस कर रहे थे तो वे इस विषय को परमेश्वर के सुपुर्द करें। कोरह और उसके सहलेवियों को मूसा ने विशेष रूप से कहा, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इसराइल के परमेश्वर ने तुमको इसराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है? फिर भी तुम याजक पद लेना चाहते हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? दातान और अबिराम ने इतना दुस्साहसी निर्णय नहीं लिया था जैसा कि कोरह ने लिया था, और मूसा ने, ये आशा करते हुए कि षड्यंत्र में सम्मिलित हो जाने के बावजूद वे पूर्णतया भ्रष्ट नहीं हुए होंगे, उन्हें अपने सम्मुख बुलाया ताकि वो उन आरोपों को सुन सके जो उन्होंने मूसा पर लगाए थे। लेकिन वे नहीं आए, और उन्होंने धृष्टता से मूसा के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। प्रजा के सुनने में आने वाला उनका उत्तर था, क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें बीहड़ में मार डाले, सिवाय इसके कि तू हमारे ऊपर प्रधान बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों की धरोहर सौंपी। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल झोंकेगा? हम तो ऊपर नहीं आएंगे।
इस प्रकार उन्होंने अपने दासत्व के दृश्य में उसी भाषा का प्रयोग किया जिसका परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की मीरास का वर्णन करने में किया था। उन्होंने मूसा पर ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने का दिखावा करने का आरोप लगाया जिससे वह अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, और उन्होंने घोषणा की कि वे अंधे व्यक्तियों की तरह मूसा की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अनुकूल कभी कनान की ओर कभी बीहर की ओर उसके पीछे पीछे नहीं चलेंगे। इस प्रकार जो एक विनम्र पिता और धीरजवंत चरवाहे की तरह रहा था उसे एक हड़पने वाले और तानाशाह के दुष्टतापूर्ण चरित्र वाला बताया गया। उनके अपने निजी पापों के दंड के रूप में कनान से उनके बहिष्कार का आरोप भी मूसा पर लगाया गया। यह स्पष्ट था कि लोगों का समर्थन विरोधी दल के साथ था, लेकिन मूसा ने स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रजा की उपस्थिति में अपने आचरण की धार्मिकता और अपने प्रयोजनों की निर्मलता के साक्ष्य के तौर पर उसने संजीदगी से परमेश्वर से विनती की और उससे याचना की कि वह उसका न्यायी हो। सवेरा होने पर कोरह के नेतृत्व में 250 प्रधान अपने अपने धूपदान लेकर प्रस्तुत हुए। उन्हें मिलाप वाले तंबू के प्रांगण में लाया गया और परिणाम की प्रतीक्षा में लोग बाहर एकत्रित हुए। वह मूसा नहीं था जिसने कोरह
और उसकी मंडली की पराजय को देखने के लिए प्रजा को एकत्रित किया, बल्कि वे उपद्रवी थे जिन्होंने अपनी निराधार परिकल्पना में उन्हें अपनी विजय के साक्षी होने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा किया था। मंडली का बहुत बड़ा भाग खुलकर कोरह का पक्ष ले रहा था, जो हारून के विरुद्ध अपना दृष्टिकोण प्रमाणित करने के लिए आशान्वित था। इस प्रकार जब वे परमेश्वर के सम्मुख एकत्रित थे, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। मूसा और हारून को चेतावनी दी गई, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, ताकि मैं उन्हें क्षण भर में भस्म कर डालूं। लेकिन वे मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? जब मूसा 70 पुरनियों के साथ उन मनुष्यों के पास आखिरी चेतावनी लेकर गया जिन्होंने उसके पास आने से मना कर दिया था, तब कोरह, दातान और अबीराम के साथ जुड़ने के लिए सभा से पीछे हट गया था। भीड़ पीछे पीछे गई और संदेश देने से पूर्व पवित्र निर्देश द्वारा मूसा ने लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। चेतावनी का पालन किया गया क्योंकि आने वाली दंडाज्ञा का भय सभी पर छाया हुआ था। मुख्य उपद्रवियों ने स्वयं को उनसे परित्यक्त पाया जिनको उन्होंने भ्रमित किया था, लेकिन उनका साहस अविचलित था। वे अपने परिवारों के साथ अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े रहे, मानो ईश्वरीय चेतावनी को ललकार रहे हों। इज़राइल के परमेश्वर के नाम में मूसा ने घोषणा की, जो प्रजा ने सुनी, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि ये मनुष्य सभी मनुष्यों के समान सामान्य मृत्यु को प्राप्त हों और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। सभी आंखें मूसा पर टिकी हुई थीं और वे घटना की प्रतीक्षा में भय और अपेक्षा के साथ खड़े थे। जब वह ये सब बातें कह चुका, भूमि फट गई और उपद्रवी गढ़े में जीते जी समा गए और उनके साथ वह भी जो उनसे संबंधित था, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। पाप में भागीदार के तौर पर स्वयं को दोषी मान लोग वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन दंडाज्ञाएं समाप्त नहीं हुईं। बादल के भीतर से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। ये व्यक्ति मुख्य षड्यंत्रकारियों के साथ नष्ट नहीं किए गए, क्योंकि ये उपद्रव में प्रथम नहीं थे। उन्हें अपना अंत देखने की अनुमति दी गई और पश्चाताप का अवसर दिया गया, लेकिन इनकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी और इस कारण इनका अंत भी वैसा ही हुआ।
जब मूसा इज़राइल से आने वाले विनाश से भाग जाने की विनती कर रहा था, ईश्वरीय दंडाज्ञा स्थगित हो सकती थी यदि कोरह और उसकी मंडली ने प्रायश्चित कर लिया होता और क्षमा मांगी होती, लेकिन उनकी हठी दृढ़ता ने उनका विनाश निश्चित कर दिया। पूरी प्रजा उनके पाप में सहभागी थी, क्योंकि सभी ने, चाहे थोड़ी चाहे बहुत, उनके साथ सहानुभूति रखी थी। लेकिन फिर भी करुणामय परमेश्वर ने विद्रोह के अगुओं और उनके द्वारा मार्गदर्शित लोगों में अंतर दिखाया। स्वयं को भ्रमित होने देने की अनुमति देने वालों को प्रायश्चित का समय प्रदान किया। मूसा के सही होने का और उनके गलत होने का ठोस प्रमाण दिया गया था। परमेश्वर की सामर्थ के संकेतात्मक प्रदर्शन ने संपूर्ण संदिग्धता को मिटा दिया था। यीशु, वह स्वर्गदूत जो इब्रियों के आगे आगे जाता था, उन्हें विनाश से बचाना चाहता था। क्षमा उनके लिए ठहरी हुई थी। परमेश्वर का न्याय निकट था और उनसे पश्चाताप की याचना कर रहा था। स्वर्ग की ओर से एक विशेष प्रबल हस्तक्षेप ने विद्रोह को थाम लिया था। अब यदि वे परमेश्वर द्वारा किए गए बीच बचाव पर प्रतिक्रिया दिखाते, तो वे बच सकते थे। लेकिन विनाश के डर से वे दंडाज्ञा से भाग तो गए, लेकिन उनका विद्रोह ठीक नहीं हुआ। उस रात वे डरे हुए अपने तंबुओं में लौटे,
लेकिन उन्हें पछतावा नहीं था। कोरह और उसकी मंडली ने उनकी मिथ्या प्रशंसा करके उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि वे भले लोग थे और उनका मूसा द्वारा शोषण किया गया था और उनके साथ गलत हुआ था। यदि वे स्वीकार करते कि कोरह और उसकी मंडली गलत थे और मूसा सही था, तो भीड़ में मृत्यु का दंड वे उसी प्रकार ग्रहण करते जैसे कि परमेश्वर का वचन। वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने विश्वास करने का प्रयास किया कि मूसा ने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने बड़े चाव से इस आशा को संजोए रखा था कि एक नई शासन प्रणाली का संस्थापन होगा जिसमें दंड के स्थान पर प्रशंसा और चिंता और कलह के स्थान पर विश्राम होगा। जो मनुष्य विनाश को प्राप्त हो गए थे, उन्होंने प्रशंसापूर्ण शब्द कहे थे और उनके लिए अत्यंत प्रेम और गहरी रुचि का दावा किया था, और सुनने वाले लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि कोरह और उसके सहयोगी भद्र पुरुष रहे होंगे, और यह कि मूसा किसी प्रकार से उनके विनाश का कारण रहा था। मनुष्य के लिए परमेश्वर का इससे अधिक अपमान करना कदाचित ही संभव है कि वह उन्हीं के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले माध्यमों को तिरस्कृत और अस्वीकार करे। इसराइलियों ने केवल यह ही नहीं किया, वरन मूसा और हारून दोनों को मार डालने की भी योजना बनाई। फिर भी उन्होंने परमेश्वर से अपने जघन्य पाप के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता को नहीं समझा। परख अवधि की वह रात पश्चाताप और पापों का अंगीकार करने में नहीं, वरन उन्हें पापियों में सबसे श्रेष्ठ बताने वाले प्रमाणों का प्रतिरोध करने के उपायों को ढूंढने में व्यतीत की गई। वे अभी भी परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए घृणा पाले हुए थे और उनके आधिपत्य का प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने स्वयं को तैयार किया। उनके निर्णय को विकृत करने और उन्हें उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर विनाश की ओर ले जाने के लिए शैतान आसपास ही था। जो अधोलोक में समा गए थे, उन दंडित पापियों की चिल्लाहट पर समस्त इसराइल भाग खड़ा हुआ था, क्योंकि वे कहने लगे, हमें भी भूमि निगल न ले। लेकिन दूसरे दिन इसराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मारा है, और वे अपने निष्ठावान आत्मत्यागी अगुओं के विरुद्ध हिंसा पर उतरने वाले ही थे। मिलाप वाले तंबू के ऊपर बादल में पवित्र तेज का प्रदर्शन दिखाई दिया, और बादल में से एक आवाज ने मूसा और हारून को संबोधित किया, तुम मंडली के बीच में से निकल जाओ ताकि मैं इन्हें क्षण भर में भस्म कर दूं। पाप का दोष मूसा पर नहीं था, इसलिए उसे डर नहीं था और वह मंडली को नष्ट होने देने के लिए छोड़कर नहीं गया। इस भयावह संकट के समय भी वह विलंब करता रहा और उसने उसकी देखरेख में की भेड़ों में अच्छे चरवाहे की रुचि का प्रमाण दिया। उसने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर का कोप उसके चुने हुए लोगों को पूरी तरह नष्ट न करे। अपनी मध्यस्थता के द्वारा मूसा ने प्रतिशोध के हाथ को थाम लिया ताकि अनाज्ञाकारी उपद्रवी इसराइल का सर्वनाश न हो।
लेकिन कोप का कर्मक आगे बढ़ चुका था, महामारी मृत्यु देने का काम कर रही थी। अपने भाई के निर्देशानुसार हारून ने एक धूपदान लिया और वह उनके लिए प्रायश्चित करने मंडली के बीच में गया। वह मृतकों और जीवित लोगों के बीच में खड़ा हुआ। धूप के धुएं के साथ मिलाप वाले तंबू से मूसा की प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के पास ऊपर गईं और महामारी को स्थगित कर दिया गया। लेकिन तब तक 14,000 इसराइली मरे पड़े थे, और ये बड़बड़ाहट और विद्रोह के पाप का प्रमाण था। याजकता का हारून के परिवार में स्थापित होने का अतिरिक्त प्रमाण भी दिया गया। पवित्र निर्देश के द्वारा प्रत्येक गोत्र ने एक एक छड़ी तैयार की और उस पर गोत्र या घराने का नाम लिखा। हारून का नाम लेवी के नाम वाली छड़ी पर था। सभी छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में वाचा के संदूक के सामने रखा गया। किसी भी छड़ी पर कलियों और फल पत्तों का उभर आना इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर ने उस गोत्र या परिवार को याजकता के लिए चुना है। सुबह होने पर हारून की वह छड़ी जो लेवी वंश की थी, एकमात्र ऐसी थी जिससे नई पत्तियां उगनी आरंभ हुई थी। उस छड़ी को लोगों को दिखाया गया
और उसके पश्चात उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए साक्षी के तौर पर मिलाप वाले तंबू में रख दिया गया। इस चमत्कार ने याजकता के विवादित विषय का समाधान कर दिया। अब ये पूरी तरह प्रमाणित हो गया था कि मूसा और हारून ने ईश्वरीय अधिकार से बातें कही थीं, और लोग भीड़ में मृत्यु को प्राप्त होने के कटु सत्य पर विश्वास करने के लिए विवश हो गए। वे बोले, हमारे प्राण निकले जाते हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। उन्होंने अंगीकार किया कि अपने अगवों के विरुद्ध विद्रोह में उन्होंने पाप किया था, और यह कि कोरह और उसके सहयोगियों ने परमेश्वर का न्यायसंगत दंड भुगता था। कोरह के विद्रोह में एक छोटे प्रदर्शन मंच पर उसी भावना का क्रियाशील होना दिखाई देता है जिसके प्रभाव में शैतान ने स्वर्ग में विद्रोह किया। वह घमंड और महत्वाकांक्षा ही थे जिन्होंने लूसीफेर को परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध शिकायत करने को उकसाया और स्वर्ग में स्थापित शासन प्रणाली को उखाड़ फेंकने का प्रयास करवाया। उसके पतन के समय से उसका लक्ष्य रहा है कि वह मनुष्य के मन में असंतोष और ईर्ष्या की उसी भावना, पद और सम्मान की उसी महत्वाकांक्षा को जागृत करे। इसी प्रकार उसने कोरह, दातान और अबिराम के मनों में डाह, अविश्वास और विद्रोह को उकसाया और आत्म उन्नति की अभिलाषा को जागृत किया। शैतान के प्रभाव में आकर उन्होंने परमेश्वर द्वारा नियुक्त मनुष्यों को तिरस्कार किया और इस प्रकार परमेश्वर का उनका अगुवा होने का भी तिरस्कार किया। मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाने में उन्होंने परमेश्वर की निंदा की और इसमें वे इतने भ्रमित हो गए थे कि वे स्वयं को धर्मी और उनके पापों को धिक्कारने वालों को शैतान द्वारा प्रेरणा प्राप्त समझने लगे थे। कोरह के विनाश का कारण ये बुराइयां क्या वर्तमान में विद्यमान नहीं है? घमंड और महत्वाकांक्षा व्यापक है और जब इन्हें संजोया जाता है तो यह ईर्ष्या के लिए और आधिपत्य के प्रयास के लिए द्वार को खोल देते हैं और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है और अनजाने में शैतान की मंडली में खिंच जाता है। कोरह और उसके सहभागियों की तरह कई लोग, वे भी जो यीशु के तथाकथित अनुयायी हैं, स्वयं के उत्थान या पदोन्नति के लिए इतनी व्यग्रता से सोच विचार कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर के दासों का गलत प्रतिनिधित्व करके उन्हें झूठा ठहराकर और उन पर ऐसे नीच और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों का आरोप लगाकर जो स्वयं उनके हृदयों को प्रेरित करते हैं, वे लोगों का समर्थन और सहानुभूति पाने के लिए सत्य को विकृत करने के लिए तैयार है। सभी प्रमाणों के विरुद्ध मिथ्या को लगातार दोहराने से वे अंततः उसे ही सत्य मानने लगते हैं। परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर से लोगों का विश्वास उठा देने का प्रयास करने में वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि वे एक अच्छे काम में व्यस्त है और तत्परता से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इब्री परमेश्वर के प्रतिबंधों और निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। वे नियंत्रित किए जाने पर अधीर हो जाते थे और फटकार प्राप्त करने के लिए अनिच्छुक थे। मूसा के विरुद्ध उनकी कुड़कुड़ाहट का यही रहस्य था। यदि उन्हें अपनी ही इच्छाएं पूरी करने के लिए छोड़ दिया जाता तो उनके अगुवे के विरुद्ध उनकी शिकायतें कम होती। कलीसिया के इतिहास में आरंभ से अंत तक परमेश्वर के दासों को इसी भावना का सामना करना पड़ा है। पापमय अतिभोग के माध्यम ही से मनुष्य शैतान को अपने मन में आने देता है और वे दुष्टता के एक चरण से दूसरे चरण में चला जाते हैं। प्रकाश का तिरस्कार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और हृदय को कठोर बना देता है, जिससे मनुष्य के लिए पाप में अग्रसर होना और बेहतर प्रकाश का तिरस्कार करना आसान हो जाता है, जब तक कि उनकी कुकर्म करने की आदतें जड़ पकड़ लेती हैं। पाप उन्हें पाप प्रतीत नहीं होता है। जो परमेश्वर के वचन का श्रद्धापूर्वक प्रचार करता है और उसके द्वारा उनके पापों को धिक्कारता है, वो उनकी घृणा का पात्र हो जाता है। सुधार के लिए अनिवार्य त्याग और कष्ट को सहन करने के लिए विमुख वे परमेश्वर के दास के विरुद्ध हो जाते हैं और उसकी फटकार को कठोर और नागवार ठहराते हैं। कोरह के समान वे लोगों के निर्दोष होने की घोषणा करते हैं और डांटने वाले को सारे कष्टों का कारण बताते हैं। उनकी अंतरात्मा को इस भ्रम से शांत करते हुए कलीसिया में असामंजस्य का बीज बोने के लिए और कलीसिया के प्रत्याशित समर्थकों के हाथों को शक्तिहीन करने के लिए ईर्ष्यालु और असंतुष्ट लोग एक हो जाते हैं। जिन्हें परमेश्वर ने उसके काम में अगुवाई करने के लिए चुना है, उनके प्रत्येक प्रयास ने संदेह को उत्पन्न किया है। उनके हर कार्य को ईर्ष्यालु और मीन मेख निकालने वालों द्वारा तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। ऐसा ही लूथर, वेस्ली और अन्य सुधारकों के समय में था। आज भी ऐसा होता है। कोरह ने वो मार्ग नहीं चुना होता जो उसने चुना, यदि उसने विश्वास में ये जाना होता कि इसराइल को दिए गए सभी निर्देश और ताड़ना परमेश्वर की ओर से थे। काश कि उसने ये जाना होता। परमेश्वर ने ठोस प्रमाण दिया था कि इसराइल की अगुवाई वो स्वयं कर रहा था, लेकिन कोरह और उसके सहयोगी प्रकाश का तब तक तिरस्कार करते रहे जब तक कि वे इतने अंधे हो गए कि परमेश्वर के सामर्थ्य के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन भी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन सभी प्रदर्शनों का श्रेय उन्होंने मानवीय या शैतानी शक्ति को दिया। ऐसा ही उन लोगों ने किया जो कोरह के विनाश के तत्पश्चात मूसा और हारून के पास से कहते हुए आए, तुमने परमेश्वर के लोगों को मार डाला है। बावजूद इसके कि उन्हें भ्रमित करने वाले लोगों के विनाश में उनके पास उनके चुने हुए मार्ग पर परमेश्वर की अप्रसन्नता का सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण था, ये घोषणा करते हुए कि शैतान की शक्ति के माध्यम से मूसा और हारून ने सिद्ध और भले मनुष्यों को मारा था, उन्होंने परमेश्वर की दंडाज्ञाओं का उत्तरदायी शैतान को ठहराया। उनके इसी कृत्य ने उनके विनाश पर मुहर लगा दी। उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया था, वो पाप जिसके द्वारा ईश्वरीय अनुग्रह के प्रभाव के प्रति मनुष्य का हृदय प्रभावोत्पादक ढंग से कठोर हो जाता है। मत्ती 12 आयत 32 में लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये शब्द हमारे उद्धारकर्ता द्वारा तब कहे गए जब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जो अनुग्रह के कार्य उसने किए थे उनका श्रेय यहूदियों ने शैतान को दिया। पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर मनुष्य के साथ संपर्क करता है, और जो इस माध्यम से शैतानी मानकर जानबूझकर अस्वीकार करते हैं वे स्वर्ग और प्राणी के बीच संपर्क का साधन नष्ट कर देते हैं।
परमेश्वर पापी को उसके पाप का एहसास दिलाने और उसको फटकारने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति के द्वारा काम करता है, और यदि पवित्र आत्मा के कार्य को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता है तो परमेश्वर मनुष्य के लिए और कुछ नहीं कर सकता। अनुग्रह का अंतिम स्रोत भी उपयोग हो गया। अपराधी स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लेता है और पाप के पास स्वयं को निरोग करने का कोई उपाय नहीं। ऐसी कोई आरक्षित शक्ति नहीं जिसके द्वारा परमेश्वर पापी के परिवर्तन और दोष सिद्धि के लिए काम कर सके। पवित्र आज्ञा यह है कि उसे अकेला छोड़ दो। होशे 4 आयत 17। फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड की भयानक प्रतीक्षा और क्रोध की भीषण अग्नि ही शेष रह जाते हैं जो परमेश्वर के विरोधियों को भस्म कर देंगे। इब्रानियों 10 आयत 26-27।